नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से कुरंथियों के नाम संत पौलुस द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है। ये यीशु तेरा पवित्र लहू।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर में रहकर आनंदित हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस अध्ययन में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसके 7 अध्याय और उसके 1 से 16 पद तक का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं, सीखते हैं, निश्चित रूप से हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए आत्मिक लाभ का कारण ठहरने पाए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का विषय है पौलुस के मन में परमेश्वर की सांत्वना। परमेश्वर की सांत्वना के बारे में यह अंतिम अध्याय है जो पौलुस के मन में परमेश्वर की सांत्वना के बारे में है। यह एक व्यक्तिगत एवं अद्भुत अध्याय है। इस अध्याय की पृष्ठभूमि के लिए हमें स्मरण करना होगा कि कुरिन्थ की कलिसिया में एक पुरुष घोर अपराध का दोषी था। उसके संबंध अपने पिता की पत्नी के साथ अवैध था, वह उसकी सौतेली माँ थी। कलिसिया उसके इस दुराचार को अनदेखा कर रही थी। पौलुस ने अपने प्रथम पत्र में उन्हें चेतावनी दी थी कि वे उसके साथ कुछ करें। अब उन्होंने उसे चिताया तो उसने पश्चाताप किया और अपने पापों का अंगीकार किया। अब पौलुस उन्हें दूसरा पत्र लिख रहा है। पौलुस के पत्र का सही प्रभाव पड़ा और उन्होंने उस व्यक्ति के साथ जो किया वह सही था। तीतुस पौलुस के पास उसके बारे में समाचार लाया कि वह अपने पापों के लिए रोता है और मानता है कि वह कलीसिया द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं है। पौलुस इसी संदर्भ में कह रहा है। तो आइए देखें दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय उसका 1 पद लिखा है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पौलुस कौन सी प्रतिज्ञाओं के बारे में कह रहा है? अध्याय 6 के अंत में जो प्रतिज्ञाएं हैं उनके बारे में वह कह रहा है। परमेश्वर ने कहा कि यदि हम उसकी आज्ञा मानेंगे तो वह हमारा पिता होगा और हम उसके पुत्र पुत्री हो जाएंगे और वह हमारे साथ यह संबंध निभाएगा। परंतु यहाँ एक बात पर आपने ध्यान दिया है, यहाँ यह नहीं लिखा है कि यदि हम उनमें से निकलकर पृथक न हुए तो उद्धार से वंचित हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि यदि हम निकलकर पृथक न हुए और पवित्र जीवन नहीं जिए तो परमेश्वर हमारे साथ वह व्यवहार नहीं कर पाएगा जो एक पिता अपने पुत्र के साथ करता है। मैंने आपको एक सांसारिक पुत्र के पिता के दिल की बात सुनाई थी। मैं अपने पुत्र के साथ पिता का व्यवहार करना चाहता हूँ, परंतु मैं असहाय हूँ। वह मुझसे अलग हो गया है और वह परेशानियों और कठिनाइयों में पड़ा हुआ है। वह मुझसे घृणा करता है, इस कारण मैं उसका पिता नहीं हो सकता। वह उस सांसारिक पुत्र का पिता था, परंतु पिता का प्रेम दर्शाने में असहाय था। परमेश्वर हमें पिता का अनुराग अनुभव करवाना चाहता है। हम में से अधिकांश जन अनुभव नहीं कर पाए हैं कि हमारे पास कैसा अद्भुत पिता है, परंतु हम उसे एक सच्चा पिता होने का अवसर प्रदान नहीं करते हैं। जी हाँ, हम परिवर्तन लाने के लिए क्या कर सकते हैं? पौलुस इसका उत्तर देता है, अतः हे मेरे प्रियों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। हम अपने को कैसे शुद्ध करेंगे? हम पाप के दोष से अपना विवेक स्वयं शुद्ध नहीं कर सकते। मैं दोषी विवेक का कलंक स्वयं नहीं धो सकता, परंतु परमेश्वर ने यह काम किया है मसीह की मृत्यु और लहू के बहाने के द्वारा। जी हाँ, मसीह के लहू द्वारा अपने पापों का शोधन प्राप्त करने के बाद हमारे मनों को दैनिक प्रदूषण से शोधन की आवश्यकता होती है। विश्वास करके वचन को ग्रहण करने और उस पर आचरण करने के द्वारा मैं शरीर और आत्मा की सब अशुद्धता से स्वच्छ हो जाता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 17 पद में यीशु के कहने का अर्थ यही था, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। संसार का सर्वोत्तम साबुन परमेश्वर का वचन है। वह हमारा सच्चा शोधन करता है। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ बनाता है कि हम अपने जीवन में पाप का निवारण करें। पौलुस कहता है कि हमें शरीर और आत्मा की सब अशुद्धियों से स्वयं को शुद्ध करना है। परमेश्वर की दृष्टि में पाप कैसा भी हो, वह गंदगी ही है। जी हाँ, कैसे भी पाप क्यों ना हो, वह गंदगी ही है। अब शरीर के पाप और आत्मा के पाप में क्या अंतर है? शरीर की अशुद्धि वह है जो शरीर द्वारा किए गए पाप हैं, अपवित्र लालसाएं, अनियंत्रित अभिलाषाएं, पियक्कड़पन, पेटूपन, मर्यादा रहित प्रेम, ये सब शरीर के पाप हैं, ये गंदगी हैं। आपको और मुझे इस तथ्य का बोध होना आवश्यक है कि आज हम जिस संसार में रहते हैं वह शरीर के पाप का मान रखता है। इसका एक उदाहरण है शराब के प्रति संसार का स्वभाव। आज मनुष्य शराब को उचित समझता है और उसका विज्ञापन भी बहुत देता है। मैंने एक विज्ञापन सुना था, आज एक परिपक्व बुद्धिमान और सफल मनुष्य की पहचान है कि वह मिश्रित शराबें पीता है। मनुष्य के मस्तिष्क का कैसा वशीकरण है, कैसा प्रचार है। किसी भी राजनीतिक शासक ने ऐसा परिपूर्ण कार्य नहीं किया है। शराब के प्रति रुचि बलात् विचार परिवर्तन लाती है। यह विज्ञापन जिसकी मैंने चर्चा की वह किसी शराब का विज्ञापन नहीं था, यह उस संस्था का विज्ञापन था जो शराबियों के मध्य सेवा करती है। उस विज्ञापन में यह भी लिखा था कि कुछ लोग नहीं जानते कि शराब के साथ कैसा व्यवहार करें। मेरे मित्रों, मैं कहूंगा बहुत है, लाखों लोग और हैं जो इस प्रकार से शराब पीते हैं। इन शराब के प्रेमियों के लिए अस्पताल का खर्चा उठाने के लिए कर भर रहे हैं। बाइबल इस विषय में क्या कहती है, सुनिए हबक्कूक की पुस्तक जिसमें हबक्कूक क्या कहता है, 2 अध्याय उसके 15 पद में, हाय उस पर जो अपने पड़ोसियों को मदिरा पिलाता है और उसमें विष मिलाकर उसे मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। मेरे प्रियो, यदि आप अपने घर में अपने पड़ोसी को घर में शराब पिलाते हैं, परमेश्वर आप पर दया करे। परमेश्वर का वचन इसे झिड़कता है। देह के पापों का दूसरा उदाहरण है अश्लील पुस्तकों को पढ़ना, पुस्तकें जो मानव शरीर और यौनाचार का महिमान्वन करती हैं। इस वर्जनाहीन अर्थात स्वच्छंद समाज में आज भी परमेश्वर का वचन शरीर के पाप का तिरस्कार करता है। यदि आप इसके भागी होते हैं तो मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके साथ पिता जैसा व्यवहार नहीं कर पाएगा। आप उसकी संतान अवश्य हैं, परंतु परमेश्वर चाहते हुए भी आपके साथ पिता जैसा व्यवहार नहीं कर पाता है, क्योंकि इस संसार में रहते हुए एक पिता नहीं चाहेगा कि उसका बेटा शराबी हो, उसका बेटा लुटेरा हो, उसका बेटा ऐसे कुछ गलत काम करे जो उचित नहीं है। तो हमारा पिता परमेश्वर क्यों इससे बर्दाश्त करेगा? मेरे मित्रों, अब पौलुस आत्मा की अशुद्धता का भी उल्लेख करता है। यह कैसा पाप है? पीठ पीछे बुराई करने को हम क्या कहेंगे? मेरे मित्रों, किसी विश्वासी भाई के बारे में झूठी बातें गढ़ना, ऐसे अनेक मनुष्य हैं जिनसे बंदूक उठाकर गोली मार देने का साहस नहीं है, परंतु किसी की पीठ के पीछे झूठ का छुरा घोंपने से वे कभी भी नहीं चूकते हैं। कलीसिया के कुछ पवित्र जन इस व्यवहार के दोषी हैं। आत्मा के कुछ गुप्त पाप भी हैं, जैसे निस्सारता एवं घमंड, आत्मा अभिमान, अकड़, अविश्वास, लालच आदि आत्मा के घृणित पाप हैं। कलीसिया के अनेक पवित्र जन मत करो की लंबी सूची अपनाए हुए हैं। शराब मत पियो, धूम्रपान मत करो, जुआ मत खेलो। उनमें से एक भी जन सिगरेट को हाथों से नहीं लगाएगा, परंतु उसके मुंह की बातें सिगरेट से भी अधिक जलाती हैं। ये आत्मा के कुछ पाप हैं। पौलुस कहता है, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। इब्रानियों के पत्री का लेखक कहता है, इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 13 और 14 पद में, अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए, सबसे मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। मेरे प्रियो, मसीह यीशु मेरी धार्मिकता है, मसीह मेरी पवित्रता है। अब समस्या यह है कि मेरा जीवन और उसकी सिद्धता में आसमान और जमीन का अंतर है। परमेश्वर कहता है कि हमारे मध्य पवित्रता का ऐसा बड़ा अंतर नहीं होना है, वह हमारे जीवन में पवित्रता चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, हमें अपने हृदय में जगह दो, हमने न किसी के साथ अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा, न किसी को ठगा। ध्यान दीजिए, पौलुस उन्हें विश्वास दिलाता है कि उसने किसी का बुरा नहीं किया है, उसने किसी को नहीं ठगा है, वह उनके पास अपने कामों के लिए पैसा लेने के लिए भी कभी नहीं गया। काश आज के विश्वासी यह कह पाए, कभी कभी कलीसिया में यथोचित कार्य नहीं किया जाता है, पैसा जिस काम के लिए आता है उसी काम में लगाया जाना चाहिए। मेरे विचार में पैसा वहीं लगाना चाहिए जहां उसका उद्देश्य है। कलीसिया को यह अधिकार नहीं कि वह किसी विशेष परियोजना का पैसा अपने ऋण भुगतान में करे या उसे सामान्य कोष में डाले। पौलुस उन्हें विश्वास दिलाता है कि हमने न किसी के साथ अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय के 3 पद में लिखा है, मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यह नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस उन विश्वासियों से अत्यधिक प्रेम रखता था, वे उसके मन में वास करते थे। आगे हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय के 4 पद में, मैं तुमसे बहुत हियाप के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है, मैं अशांति से भर गया हूँ और अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। अब वह कहता है उसे शांति मिली है और उसका मन प्रफुल्लित है और इसका कारण भी देता है। आइए पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 5-9 पद में, क्योंकि जब हम मकी दुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे, बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी, तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और न केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारे धुन का सुसमाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं तुमको शोक पहुँचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुँचे। मेरे मित्रों, यह मधुर वचन है। हम इसकी पृष्ठभूमि देखें तो वास्तव में इसे सराहेंगे। आपको स्मरण होगा कि प्रथम पत्र में पौलुस ने कठोरता दिखाई थी। वह उन्हें शिशु और शारीरिक मनुष्य कह रहा था। उसने उनकी अनैतिकता पर उंगली उठाई थी और उन्हें आदेश दिया था कि वे उसका निवारण करें। उन्होंने पौलुस के आदेशानुसार उनके मध्य से पाप का निवारण किया। जब तीतुस फिलिपी नगर से या नगर में पौलुस के पास आया, तब उसने पौलुस को सुसमाचार सुनाया कि उन्होंने उनके मध्य से दुराचार का निवारण कर दिया है और दोषी व्यक्ति ने मन फिराकर सीधा मार्ग अपना लिया है। अतः पौलुस अपने दूसरे पत्र के अध्याय 2 में लिखता है कि वे उसे क्षमा करें और सांत्वना दे कि वह शाद में न डूब जाए, वह सहभागिता में पुनः स्थापित किया जाए। तब हम देखते हैं कि इफिसुस से कूच करके वह त्रोवास में आया और तीतुस की प्रतीक्षा की, परंतु वह वहां नहीं आया। अतः पौलुस को आत्मग्लानि हो रही थी कि वह उन्हें ऐसी कठोर बातें नहीं लिखता, स्वयं वहां जाता तो अच्छा होता। अतः वह फिलिपी नगर चला गया। वहां तीतुस आया और कुरिंत का समाचार पौलुस को सुनाया। अब कोई कहे, मैं तो सोचता था कि धर्मशास्त्र प्रेरित वचन है और पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिख रहा था। कुरिंथ को भी प्रेरणा में ही पत्र लिखा गया था। यह बात सर्वथा सही है। यह परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया वचन है। मैं संपूर्ण मन से इस पर विश्वास करता हूँ। तो फिर पौलुस क्यों स्वयं को कोस रहा था? इसलिए कि पौलुस एक मनुष्य था। परमेश्वर ने ही उसे प्रेरणा दी कि वह यह सब लिखे, जिससे कि हम जाने कि वह भी एक मनुष्य ही था। इससे हमें यह भी समझ में आता है कि वह कितना उदार, मधुर और प्रेमी था, और हमें भी उसके सदृश होना है। मेरे प्रियो, यह हमारे लिए कैसी उत्तम शिक्षा है। समाचार प्राप्त करने पर उसने लिखा, परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। अति संभव है कि इस धर्मशास्त्र को पढ़कर कोई उस व्यक्ति को पत्र लिखने बैठ जाएगा जिसे उसने वर्षों पूर्व ठेस पहुंचाई थी। यदि यह आप हैं तो क्षमा याचना करते हुए लिखें कि आप संबंध सुधारना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप उसे असीम आनंद से भर देंगे। हमें अधिकाधिक यह काम करना है। मेरे मित्रों, यह पौलुस की अति व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है कि उसने कहा, जब हम मक्की दुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी, तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमें शांति दी। आप परमेश्वर के किसी पवित्र जन की सहायता कर सकते हैं, उसके लिए शांति दूत बन सकते हैं। मेरे मित्रों, आप पिछली बार कब अपने प्रचारक के पास गए और उसके गले में बाहें डालकर कहा, भाई मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कुछ दान देना चाहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप कठोर परिश्रम करते हैं और परमेश्वर के सत्य के लिए खड़े होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। वह आपके इस व्यवहार को सराहेगा, क्योंकि उसे भी किसी के प्रेम की आवश्यकता है, उसे भी किसी के उत्साह की आवश्यकता है। आगे पौलुस कहता है, और न केवल उसके अर्थात तीतुस के आने से, परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। दूसरे शब्दों में तीतुस को आपसे शांति और मुझे तीतुस के समाचार सुनकर शांति मिली। एक दिन कलीसिया आराधना के समय एक पुरुष मेरे पास आया और बोला, मेरे भाई ने मुझे पत्र में लिखा है कि वह आपके रेडियो कार्यक्रम को सुनता है और जब उससे भेंट करो तो कहना कि तुम्हारे भाई ने मसीह को ग्रहण किया है। मैं नहीं जानता क्यों उस पुरुष के भाई ने स्वयं मुझे पत्र नहीं लिखा, उसने अपने भाई को लिखा और उसने आकर मुझे यह शुभ संदेश सुनाया। मैं उसकी बात सुनकर अति आनंदित हुआ। उसकी बात सुनकर मुझे बोध हुआ कि मुझे अपना रेडियो कार्यक्रम चलाते रहना चाहिए। इसी बार कुरिन्थ के विश्वासियों ने पौलुस की प्रशंसा की। मेरे मित्रों, किसी की प्रशंसा करने से न चुकें। किसी के विषय कुछ अच्छा कहने में आपकी जीभ खराब नहीं होगी। आगे लिखा है, यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुँचे। आप देख रहे हैं ना कि मन फिराव और आंसू बहाना एक ही नहीं है। तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात हानि न पहुँचे। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 7:10 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिए, यह परमेश्वर द्वारा दी गई पश्चाताप की परिभाषा है। यह सच्चा मन फिराव है। पश्चाताप का अर्थ है मन का बदल जाना। जहाँ तक मेरा विचार है, किसी भटके हुए मनुष्य से परमेश्वर जिस एकमात्र पश्चाताप की आशा करता है वह है विश्वास करना। विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। विश्वास करने पर क्या होता है? मन का परिवर्तन होता है। किसी बात से विमुख होकर किसी की ओर हो जाना। सुनिए पौलुस थिस्सलुनीकी के नगर की कलीसिया से क्या कहता है। 1 थिस्सलुनीका 1:9, और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। यह मन का परिवर्तन या मन फिराव है। जी हाँ, यह कैसे हुआ था? वे सबसे पहले मसीह की ओर फिरे। पौलुस ने उनके मध्य मूर्ति पूजा के विरोध में कुछ नहीं कहा था। उसने उन्हें मसीह का सुसमाचार सुनाया था और वे मसीह की ओर फिर गए। वे पहले मूर्ति पूजा करते थे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि मसीह कौन है। अब वे मसीह की ओर हो गए थे। इसका परिणाम क्या हुआ? वे मूर्तियों से विमुख हो गए। यही मन फिराव था। यह उद्धार से रहित मनुष्य का मन फिराव है। वह मसीह की ओर उन्मुख होना है जिससे उद्धार होता है। उद्धार के निमित्त मन फिराव। जी हाँ, मैं नहीं जानता कि परमेश्वर हमसे चाहता है या नहीं कि हम उद्धार से रहित संसार को मन फिराव के लिए बाध्य करें, परंतु यह तो निश्चित है कि वह चाहता है कि हम मसीह के नाम पर बल दें। जब वे मसीह के निमित्त प्रतिक्रिया दिखाएंगे, तब स्वाभाविक है कि वे अपने पूर्वकालीन अविश्वास से मन फिराएंगे। परमेश्वर विश्वासियों से मन फिराव चाहता है। यदि वे पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, उसके लिए मन फिराव की आवश्यकता है। अधिकांश जन केवल आंसू बहाते हैं, जो सच्चे मन फिराव का चिन्ह नहीं है। यह सांसारिक दुख है जिसके कारण मृत्यु उत्पन्न होती है। सच्चा पश्चाताप परमेश्वर भक्ति का शोक है, जो ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। यह मन फिराव ऐसा है कि इसमें पछतावा नहीं होता। मेरे पिताजी एक बड़ी नाव की कहानी सुनाते थे जो सीटी बजाते समय पीछे चलने लगती थी, क्योंकि उसके इंजन में इतनी शक्ति नहीं थी कि जब वह सीटी बजाए तो उसे आगे बढ़ाया जाए। आज अनेक विश्वासी ऐसे ही हैं। उनकी वाणी अधिक शोर करती है और शक्ति कम काम करती है। वे आंसू बहाकर हृदय विदारक प्रदर्शन करते हैं, परंतु मन फिराव नहीं होता है। वे आंसू बहाते हैं और गलत मार्ग पर चलते रहते हैं। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की ओर फिरें। परंतु कुरिन्थ के विश्वासियों का पश्चाताप सच्चा था। हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 7:11-13 में पढ़ते हैं, अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह न तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है वह परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए, इसलिए हमें शांति मिली। हमारी इस शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ, क्योंकि उसका जी तुम सब के कारण हरा भरा हो गया है। जी हाँ, पौलुस उसके सच्चे मन फिराव के लिए उन्हें सराहता है। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 14 से 16 पद में, क्योंकि यदि मैं उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थी वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतुस के सामने भी सच निकला। जब उसको तुम सबके आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि कैसे तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी बढ़ता जाता है। मैं आनंदित हूँ क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है। मेरे मित्रों, पौलुस ने अपना दिल खोलकर भावनाओं का प्रदर्शन किया। वह आनंद से भरा था, उसे अब शांति मिल गई थी। यह उसके मन में परमेश्वर की शांति थी, अपने लोगों के प्रति प्रेम था। मेरे मित्रों, आज आपका जीवन कैसा है? क्या आप चाहते हैं कि आप भी मन फिराएं और उस अद्भुत शांति को जो समझ से परे है प्राप्त करें? यदि हाँ, तो आज परमेश्वर के निकट आएं। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आप अपने जीवन में अवश्य ही मन फिराव लाएंगे और उस अद्भुत शांति को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है। Yeah।